प्रेरितों के काम अध्याय 5। हनन्याह नाम के एक व्यक्ति और उसकी पत्नी सफीरा ने मिलकर अपनी संपत्ति का एक हिस्सा बेच दिया और अपनी पत्नी की जानकारी में उसने इसमें से कुछ धन बचा लिया और कुछ धन प्रेरितों के चरणों में रख दिया। इस पर पतरस ने कहा,
हे हनन्याह, शैतान को तूने अपने मन में यह बात क्यों डालने दी कि तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला और खेत को बेचने से मिले धन में से थोड़ा बचा कर रख लिया। उसे बेचने से पहले क्या वह तेरी ही नहीं थी? और जब तूने उसे बेच दिया तो वह धन क्या तेरे ही अधिकार में नहीं था? तूने इस बात की क्यों सोची? तूने मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से झूठ बोला है।
हनन्याह ने जब ये शब्द सुने तो वह पछाड़ खाकर गिर पड़ा और दम तोड़ दिया। जिस किसी ने भी इस विषय में सुना, सब पर गहरा भय छा गया। फिर जवान लोगों ने उठकर उसे कफन में लपेटा और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। कोई 3 घंटे बाद जो कुछ घटा था उससे अनजान उसकी पत्नी भीतर आई। पतरस ने उससे कहा,
बता, तूने तेरे खेत क्या इतने में ही बेचे थे?
सो उसने कहा,
हाँ, इतने में ही।
तब पतरस ने उससे कहा,
तुम दोनों प्रभु की आत्मा की परीक्षा लेने को सहमत क्यों हुए? देख, तेरे पति को दफनाने वालों के पैर दरवाजे तक आ पहुँचे हैं और वे तुझे भी उठा ले जाएंगे।
तब वह उसके चरणों पर गिर पड़ी और मर गई। फिर जवान लोग भीतर आए और मरा पाकर उसे उठा ले गए और उसके पति के पास ही उसे दफना दिया। सो समूची कलीसिया और जिस किसी ने भी इन बातों को सुना, उन सब पर गहरा भय छा गया। प्रेरितों द्वारा लोगों के बीच बहुत से चिन्ह प्रकट हो रहे थे और आश्चर्य कर्म किए जा रहे थे। वे सभी सुलेमान के दालान में एकत्र थे। उनमें सम्मिलित होने का साहस कोई नहीं करता था, पर लोग उनकी प्रशंसा अवश्य करते थे। उधर प्रभु पर विश्वास करने वाले स्त्री और पुरुष अधिक से अधिक बढ़ते जा रहे थे। परिणाम स्वरूप लोग अपने बीमारों को लाकर चारपाइयों और बिस्तरों पर गलियों में लिटाने लगे, ताकि जब पतरस उधर से निकले तो उनमें से कुछ पर कम से कम उसकी छाया ही पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से अपने बीमारों और दुष्टात्माओं से पीड़ित लोगों को लेकर झुंड के झुंड लोग आने लगे और वे सभी अच्छे हो जाया करते थे। फिर महायाजक और उसके साथी यानी सदूकियों का दल उनके विरोध में खड़े हो गए। वे ईर्ष्या से भरे हुए थे, सो उन्होंने प्रेरितों को बंदी बना लिया और उन्हें सार्वजनिक बंदी गृह में डाल दिया। किंतु रात के समय प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोल दिए। उसने उन्हें बाहर ले जाकर कहा,
जाओ मंदिर में खड़े हो जाओ और इस नए जीवन के विषय में लोगों को सब कुछ बताओ।
जब उन्होंने यह सुना तो भोर के तड़के वे मंदिर में प्रवेश कर गए और उपदेश देने लगे। फिर जब महायाजक और उसके साथी वहां पहुंचे तो उन्होंने यहूदी संघ तथा इसराइल के बुजुर्गों की पूरी सभा बुलाई। फिर उन्होंने बंदीगृह से प्रेरितों को बुलावा भेजा। किंतु जब अधिकारी बंदीगृह में पहुंचे तो वहां उन्हें प्रेरित नहीं मिले। उन्होंने लौटकर इसकी सूचना दी और कहा,
हमें बंदीगृह की सुरक्षा के ताले लगे हुए और द्वारों पर सुरक्षा कर्मी खड़े मिले थे, किंतु जब हमने द्वार खोले तो हमें भीतर कोई नहीं मिला।
मंदिर के रखवालों के मुखिया ने और महायाजकों ने जब ये शब्द सुने तो वे उनके बारे में चक्कर में पड़ गए और सोचने लगे,
अब क्या होगा।
फिर किसी ने भीतर आकर उन्हें बताया,
जिन लोगों को तुमने बंदी गृह में डाल दिया था वे मंदिर में खड़े लोगों को उपदेश दे रहे हैं।
सो मंदिर के सुरक्षा कर्मियों का मुखिया अपने अधिकारियों के साथ वहां गया और प्रेरितों को बिना बल प्रयोग किए वापस ले आया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं लोग उन्हें मंदिर के सुरक्षा कर्मियों को पत्थर न मारें। वे उन्हें भीतर ले आए और सर्वोच्च यहूदी सभा के सामने खड़ा कर दिया। फिर महायाजक ने उनसे पूछते हुए कहा,
हमने इस नाम से उपदेश न देने के लिए तुम्हें कठोर आदेश दिया था और तुमने फिर भी समूचे यरूशलेम को अपने उपदेशों से भर दिया है और तुम इस व्यक्ति की मृत्यु का अपराध हम पर लादना चाहते हो।
पतरस और दूसरे प्रेरितों ने उत्तर दिया,
हमें मनुष्यों की अपेक्षा परमेश्वर की बात माननी चाहिए। उस यीशु को हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने मृत्यु से फिर जिलाकर खड़ा कर दिया है, जिसे एक पेड़ पर लटकाकर तुम लोगों ने मार डाला था। उसे ही प्रमुख और उद्धारकर्ता के रूप में महत्व देते हुए परमेश्वर ने अपने दाहिने स्थित किया है, ताकि इसराइलियों को मन फिराओ और पापों की क्षमा प्रदान की जा सके। इन सब बातों के हम साक्षी हैं, और वैसे ही वह पवित्र आत्मा भी है जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं।
जब उन्होंने यह सुना तो वे आग बबूला हो उठे और उन्हें मार डालना चाहा, किंतु महासभा में से एक गमलियल नामक फरीसी, जो धर्मशास्त्र का शिक्षक भी था तथा जिसका सब लोग आदर करते थे, खड़ा हुआ और आज्ञा दी कि इन्हें थोड़ी देर के लिए बाहर कर दिया जाए। फिर वह उनसे बोला,
इसराइल के पुरुषों, तुम इन लोगों के साथ जो कुछ करने पर उतारू हो उसे सोच समझ कर करना। कुछ समय पहले अपने आप को बड़ा घोषित करते हुए थियूदास प्रकट हुआ था और कोई 400 लोग उसके पीछे भी हो लिए थे, पर वह मार डाला गया और उसके सभी अनुयायी तितर बितर हो गए, परिणाम कुछ नहीं निकला। उसके बाद जनगणना के समय गलील का रहने वाला यहूदा प्रकट हुआ, उसने भी कुछ लोगों को अपने पीछे आकर्षित कर लिया था, वह भी मारा गया, उसके भी सभी अनुयायी इधर उधर बिखर गए। इसलिए इस वर्तमान विषय में मैं तुमसे कहता हूँ, इन लोगों से अलग रहो, इन्हें ऐसे अकेले छोड़ दो, क्योंकि इनकी यह योजना या यह काम मनुष्य की ओर से है तो स्वयं समाप्त हो जाएगा, किंतु यदि यह परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें रोक नहीं पाओगे, और तब हो सकता है तुम अपने आप को ही परमेश्वर के विरोध में लड़ते पाओ।
उन्होंने उसकी सलाह मान ली और प्रेरितों को भीतर बुलाकर उन्होंने कोड़े लगवाए और यह आज्ञा देकर कि वे यीशु के नाम की कोई चर्चा ना करें, उन्हें चले जाने दिया। सो वे प्रेरित इस बात का आनंद मनाते हुए कि उन्हें उसके नाम के लिए अपमान सहने योग्य गिना गया है, यहूदी महासभा से चले गए। फिर मंदिर और घर घर में हर दिन इस सुसमाचार का कि यीशु मसीह है उपदेश देना और प्रचार करना उन्होंने कभी नहीं छोड़ा।